नाम यह प्रवर्तन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 7/10/1993 प्रातः 8 बजे दिल्ली में हुआ।
पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण 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 नारायण।
मनुष्य शरीर की प्राप्ति होने के बाद दुख संताप होना नहीं चाहिए। मनुष्य शरीर में आकर के ये अपन दुखों की थपेड़ा खाते हैं, संताप होता है, जलन होती है, द्वेष होता है, ईर्ष्या होती है, हलचल होती है, तो वास्तव में मनुष्य जन्म सफल नहीं हुआ। ये तो पशु पक्षी वृक्ष लता धूम भेड़ बकरी आदि सबको होता है, कुत्ते गधे और सुअर ऊंट है, ऐसे जो नीचे पशु माने जाते हैं, स्वापद माने जाते हैं, उनको भी होता है। वही है दुख और सुख हमारे को होता है। तेषामेषा को विशेषोस्ति वृत्तिर ये संतुतादृशी। अगर वैसी वृत्ति हमारी है तो उनमें हमारे में क्या फर्क रहा। हम दो पैरों से चलते हैं, वो चार पैरों से चलते हैं, पक्षी भी दो पैरों से चलते हैं, तो इसमें कोई विलक्षणता नहीं है। आकृति से हमारे हम और तरह के हैं तो आकृति का कोई मूल्य नहीं है। मनुष्य जन्म का मूल्य है, इसमें तीन आप में शक्ति है। अब ध्यान देकर आप लोग सुने। एक आप में करने की शक्ति है, हर एक काम कर सकते हैं। एक आप में जानने की शक्ति है, जिसने आप जान सकते हैं ये क्या तत्व है, क्या है, सुख है दुख है, जड़े चेतन है, ईंधन पुना पत्थर है, मनुष्य जानने की शक्ति है। एक मानने की शक्ति है। ये तीन शक्तियां हैं, सब भाई बहनों में है सब। ये तीन शक्ति है, इसका सदुपयोग किया जाए तो मनुष्य जन्म सफल हो जाए। तीन ताकत सब में है, जानने की शक्ति है, मानने की शक्ति है, करने की शक्ति है। तो करना क्या चाहिए? करना चाहिए उपकार, करना चाहिए सेवा, दूसरों को सुख पहुंचाना, ये करने की बात है। अपने सुख के लिए करना है, ये कोई ऊंची बात नहीं है। पशु पक्षी भी अपने लिए करते हैं। हमने देखा है बंदरी अपने बच्चे को बड़े प्यार से छाती के लगाए रहती है, और बच्चा मर जाए तो भी उसको छोड़ती नहीं है, जल्दी हाथ में लिए ही फिरती है, इतना स्नेह करती है। परंतु उसको रोटी दी जाए तो रोटी खा लेती है, बाल को नहीं देती है। मैंने अपने आंखों से देखा है, आपने भी देखा होगा। बच्चा ऐसे सामने जाने के होते घुटी मारे से चींची कर भाग जाता है, कोई कण का पड़ जाता है वो खाता है। तो अपने स्वार्थ में तो वो भी तत्पर है, आपसे ज्यादा है। आप ना अपने कुटुंब को तो देते हैं, बच्चा रिश्ते को तो देते हैं, वो भी नहीं देती, तो उसमें तो वो तेज है आपसे, स्वार्थ में कमजोर नहीं है। ऐसे पशु पक्षियों में भी है, पशु भी चारा चरता है तो दूसरे को सींग मारता, चरने नहीं देता, आराम की जगह वो लेगा और को नहीं देगा। तो करने में अपने स्वार्थ के लिए काम करना, अपने शरीर के लिए काम करना, ये कोई मनुष्यता नहीं है। मैंने एक पुस्तक में पढ़ा है, अपने शरीर के लिए ठीक करता है कि मैं जीता रहूं, निरोग रहूं, ऐसी जिसकी वृत्ति है वो तो असुर है। हिरण्याक्ष ने ऐसा किया कि मैं मरूं नहीं, जीता रहूं, राज करूं, तो अपने शरीर के लिए ऐसे करने वाला तो असुर होता है। उसके समान है, उसके दर्जे में गिना जाएगा, किस श्रेणी में होगा, हिरण्याक्ष श्रेणी में होगा। रावण ने भी अपना राज अपना रखना चाहा, सब पर अपना दबदबा, देवता आदि भी मेरी ही सेवा करे, तो अपने लिए काम करने वाले बड़े बड़े हुए, वे राक्षस असुर ही कहे गए, पशु पक्षी कहे गए। वृक्ष भी होते हैं, तो जैसे पीपल आदि वृक्ष है, उससे नीचे दूसरे वृक्ष उदय हो जाते हैं, परंतु अमली आदि वृक्ष होते हैं, उनके नीचे दूसरा पनपना नहीं, उसके नीचे घास भी ऊंचा नहीं आता, दूर दूर तक छोटा छोटा तनखा होगा, बढ़ेगा नहीं, वो सबके सार को खेचते रहते हैं। तो ये स्वार्थ वित्त तो सब में है, देवताओं में भी यही है, अपने को सुख लेना और को न देना, ये शक्ति है तो मनुष्य में है। मनुष्य दूसरों को सुख दे करके अपने दुख को स्वीकार कर लेता है। जैसे हमारी बहनों में आप देखो, गाड़ी में चढ़े हैं, भीड़ बहुत है, साधारण घर की बेचारी स्त्री है, बैठने के लिए बहुत कम जगह, थर्ड क्लास में बैठे हैं, ऐसी अवस्था में भी अपने बच्चे को गोदी में सुला देगी, आराम देगी, सुख देगी, स्वयं कष्ट उठा करके दूध देगी, रोटी मिल जाए और वो भी भूखी है, बच्चा भूखा है, तो पैसे बच्चों को खिलाएगी, आप नहीं खाएंगे, बच्चे तो आप खा लेगी, परंतु आपका हमारे ये जितने भाई बहन बैठे हैं, इसी तरह से हम पले हैं, इस माँ के स्नेह से ही हम पले हैं, उसके पालने से पले हैं। आज बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं, बड़ा बड़ा काम करते हैं, तो मनुष्य में शक्ति है, ये मानव में है कि अपने स्वार्थ का त्याग कर दूसरों की सेवा करना, परंतु वो स्वार्थ अपने कुटुंब में ही अगर रहता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये छोटी बात है। बुद्धिमानी से अपने बेटा पोता ये ठीक रहे, हमारे कुटुंब ठीक रहे, हमारे जाति के ठीक रहे, इनको हम रखें और चाहे मर जाए दुख पाओ कोई परवाह नहीं, तो ये करने के नाम अपने स्वार्थ के लिए करना नहीं है। मनुष्य में करने की बात है, वो दो है इसमें, एक तो दूसरों का हित करना और उनका उपकार करना। जैसे म्युनिसिपालिटी है तो वो शहर का हित सोचती है, शहर का ठीक सोचती है, पक्षपात रहता तो बढ़िया नहीं है चीज, पक्षपात छोड़ करके सबका हित करने का भाव है, ये हित करने की प्रवृत्ति मनुष्य कर सकता है, और ये करने से ही मनुष्य का मनुष्यपना है। अपनी जाति को ही ठीक तरह से करना और की काट छाट करना, ये मनुष्यपना नहीं है। पशु पक्षी है, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, परंतु है तो पशु पक्षियों में ही भरती, राक्षसों में असुरों में ही है। रावण ने अपने कुटुंब राक्षसों का पालन पोषण किया, देवता तो का नाश किया, औरों का नाश किया, तो अपने कुटुंब का पालन करना असुरों में ही होता है, राक्षसों में भी होता है। तो इससे भी मनुष्य जन्म की सफलता नहीं। मनुष्य जन्म की सफलता तो दूसरों के हित करने में और भगवान के याद करने में, तो वो है मानने की शक्ति। करने की शक्ति तो हित करना, अपने स्वार्थ का, अभिमान का, आराम का, मान का, पढ़ाई का त्याग करके और दूसरों का हित करना, दूसरों को मान देना, दूसरों की पढ़ाई करना, दूसरों को आराम पहुंचाना, दूसरों को धन संपत्ति आदि से संपन्न करना, ये हित करने की बात मनुष्य में है। तो ये करते हैं वो मनुष्य में मनुष्य का नालायक है। बहनों माताओं में ऐसी है, केवल अपने पति पुत्र का ही पालन नहीं, अपने देवर जेठ सास ससुर नंद आदि इनका भी पालन करें, और इतने में नहीं अपने कुटुंब का पालन करे, अपने कुटुंब का ही नहीं अपने मोहल्ले का पालन करे, अरे मोहल्ले का नहीं अपने देश का, अपने शहर का, और अपने शहर का ही नहीं अपने प्रांत का, प्रांत ही नहीं हिंदुस्तान सब का, और ऐसा ही नहीं भूमंडल मात्र का, और इतना ही नहीं देवताओं का भी, देवताओं का भी हित करने की सामर्थ्य मनुष्य में है। ये ऋषि यज्ञ है, ये देव यज्ञ है, ये मनुष्य यज्ञ है, ये भूत यज्ञ है, ये प्राणियों की सेवा करने यज्ञ बताया है। श्राद्ध तर्पण करते हैं तो पानी देते हैं, वो पानी अपने पितरों को भी देते हैं, औरों को भी देते हैं। अब क्या कहें, उदारता हिंदू धर्म की, समुद्र अत्यंत, समुद्र को भी पानी देते हैं। क्या पानी कमी है, वहां पानी है घोरा, तो उसको भी तृप्त करते हैं। भावना देखो आप, प्रकाश देते हैं, सूरज को भी प्रकाश देते हैं, दीपक कर सूरज की आरती करते हैं। ये नहीं कि उनके पास बहुत है क्या दे, अरे भाई अपना काम तो हम सेवा करें उनसे होगा ना, उनके पास है तो क्या हुआ, उनकी सेवा करना, हमारी सेवा तो नहीं पहुंची। सूर्य के पास बहुत प्रकाश है परंतु हमने तो सेवा नहीं की, समुद्र के पास बहुत जल है परंतु हमने तो जल की सेवा नहीं की, तो हम अपनी तरफ से सबकी सेवा करें। कहते हमारी कितनी सेवा है, तो एक दाक्षिणात्य रामायण में ऐसी बात हमने सुनी है, पढ़ी नहीं है, सुनी है कि जब राम जी का और रावण का युद्ध हो रहा था, उस पर ये वृक्षों पर रहने वाली होती है नहीं, इसको क्या कहते हैं, पूछा पूछा था गिलहरी गिलहरी, तो वो गिलहरी हाथ होते हैं अपने जैसे हाथ होते हैं, ऐसे हाथों में तिनका लेकर के पहुंची। राम जी ने कहा, राम जी मैं रावण को मार दूं, ऐसे तो राम जी खुश हो गए, तो उसके हाथ रखा, वो काल का लकीर हो गई, उनकी जाति की वो लकीर हो गई। तो क्या गिलहरी रावण को मार देगी, भाव है मदद करने का, तो आप भी शक्ति कितनी ऐसा नहीं है, भावग्राही जनार्दन भगवान आपका भाव देखते हैं, ऐसा नहीं कि इनके पास है, अरे है तो सही पर हमारी सेवा क्या पहुंची, भगवान खुश हो जाते हैं। अब बंदरों ने सब काम किया, अयोध्या पहुंचे तो वशिष्ठ जी महाराज से परिचय देते हैं कि महाराज ये मेरे सखा है, सुनाऊ सखा सुनने मेरे भये समर सागर का बेरे, युद्ध रूपी समुद्र में ये बेड़ा बने, ये नौका बने, इनकी सहायता से मैंने विजय की, सहायता इन लोगों ने की, और उनको हमारे गुरु जी का परिचय देते हैं, एक गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, ये पूज्य है, इनकी कृपा धनु चरण हमारे, काम तो किया बंदरों ने, कृपा हुई गुरु जी की, आपने कुछ किया ही नहीं, अपने पर अभिमान नहीं कुछ भी, तो गुरु जी की कृपा से ही हो सब अब विजय हुई हमारी, और इन साथियों ने महाराज हमारी बहुत मदद की, अपना घर सब छोड़ कर की, और इतनी महिमा गई, इतनी महिमा बंदरों की। हनुमान जी को तो कहा तुम हम प्रिय भरत सम भाई, तुम भरत के समान हो। पर ये क्या है कि मम हित लागी जन्म इन हारे, भरत उतरे मोई अधिक प्यारे। हनुमान जी ने काम बहुत किया, सीता जी की खबर लाए, युद्ध में भी काम किया, बहुत सेवा की। तो उनको तो कहते हैं तुम भरत सम भाई, और ये दूजे बंदर है ये सब मेरे को भरत से भी प्यारे हैं। हनुमान जी में सामर्थ्य थी तो सामर्थ्य के अनुसार अधिक काम कर लिया, तो सामर्थ्य के अनुसार किया, क्या बड़ी बात करी। इनकी सामर्थ्य कैसी है, काम कितना किया। एक जगह बात चली, कहे सबसे बलवान कौन है, तो कि सबसे भैंसा बलवान है, वो हाथी बलवान है, सबका शरीर में हाथी बलवान है। दूसरे आदमी के नहीं, हाथी बलवान नहीं है, चींटी बलवान है, छोटी कीड़ी वो बलवान है। कहते वो बलवान कैसे है, कि कीड़ी एक जौ के दाने को, एक गेहूं के दाने को जौ को खेच करके ले जाती है, जिसमें तीन चार कीड़ी बन जाए, छोटे छोटे कीड़ी बनाई जाए, जौ के दाने की तो चार पांच कीड़ी बन जाए। हाथी पर पांच हाथी का वजन देखो, उठा लेगा। तो कितना बल है, ऊपर से नहीं देखा जाता है, उसकी शक्ति देखी जाती है। शक्ति के अनुसार काम करना है, आप अपनी शक्ति लगा गए तो मिल जाए भगवान, आप समय अगर अपना पूरा लगा दे तो मिल जाए परमात्मा। ये धनी अधिक होते हैं वो दान अधिक करते हैं, ऐसा नहीं है। शक्ति के अनुसार किया जाए वो दान बहुत बड़ा होता, बहुत बड़ा दान होता। कैसे, एक राजा थे, वो सत्संग में जाया करते। संत कहते हैं देखो राजा उपकार करो, कहते मन ठीक नहीं लगता है महाराज, जैसा लगना चाहिए वैसा मन नहीं लगता है। कहते तुम गरीबों की, दीन दुखियों की, अपाहिजों की, अंग रहितों की और पासे संपत्ति नहीं है ऐसे गरीबों की सेवा करो। तो राजा सेवा करते थे, ब्राह्मणों की सेवा करते थे, अतिथियों की सेवा करते थे, गरीबों की सेवा कर रहे थे, परंतु उनके समाधान हुआ नहीं। करते थे सत्संग, जब ध्यान करते उसमें कुछ मन लगता भी था, परंतु जैसे चाहते थे वैसे नहीं हुआ। एक दिन की बात है, राजा महल में थे, उसके नीचे एक माई रहती थी गरीब, उसके एक बच्चा था गोदी में, और देवर सास ससुर पति कोई नहीं था, अपने बच्चा का पालन करती थी और वहां गुजर करती थी। तो एक दिन वो बालक रोने लग गया। बालक ने क्या देखा कि बच्चों में गए तो बच्चा लट्टू होता है, डोरी बांस के फेंक रहे हैं, घूमता है। वो देखा तो कहते माँ मैं ही घूमूंगा, बन ले लट्टू ला दे मेरे को। वो कहते बेटा कहां से लाऊं, जितनी पैदा करते हैं वो तो अपने रोटी खर्चे में लग जाता है, थोड़ा बहुत कपड़ा ले लेते हैं, रसोई में नमक मिर्ची भी लाना पड़ता है, और कितना काम मेरे घरों में करती हूँ जिससे काम चलता है। ठहर जा, फिर समय मिलेगा तो ला लो। नहीं मैं तो लूंगा, ऐसे उसने हट कर दिया। बालक है, उसको ये नहीं माँ के पास कितनी पूंजी है कैसा नहीं है, वो तो खेलता है, घुमाते ऐसे कर रहे, आनंद आता है उसमें, मैं ही ऐसे लट्टू घुमाऊंगा। तो रोने लग गया, रोने लग गया तो माँ भी रोने लग गई। वो विचार कहती है बालकों का किस रीति से लोग पालन करते हैं, मैं एक बालक की खिलौना भी नहीं दे सकती, क्या करूं मैं। तो उसके हृदय भर आया, वो ही रोने लग गई। तो वो रोने की आवाज तेज हो गई तो राजा तक पहुंची के नीचे कोई रो रहा है। पूछा भाई कौन रो रहा है, कैसे, क्या बात है, कि नीचे महाराज एक घर है जिसमें माँ बेटा रो रहे हैं। निगे करी केवल और क्या दुख, उनको बुलाओ। राज के आदमी आया, वो देखते ही डर की पिछड़ कांपने लग गई। भाई ये क्यों आए हैं? कि बहन तुम डरो मत, बड़े प्यार से बोला, आप चलो राजा बुलाते हैं, भय की बात नहीं है, तुम्हारे दुख क्या है ये बताओ, ऐसे आश्वासन दे वो ले गए। तो वो दोनों पहुंच गए माँ बेटा। राजा ने पूछा कि तुम क्यों रहती रोती हो? तो महाराज मेरे हृदय भर आया कि एक मेरा बालक, वो बालक एक फेंकी लट्टू वो फेरने के लिए मांगता है और मैं नहीं दे सकी, मैं क्या माँ हूँ? ये कोई माँ की बात? बच्चे की छोटी सी चीज में मैं पूरी नहीं कर सकती। तो मेरा हृदय भर आया, मैं विरोध नहीं, और करे क्या, गरीब क्या करे। राजा ने कहा तो ले जाओ, अभी अभी बाजार बंद है, तो जो विषायती है जो ये खिलौना रखते हैं उनकी दुकान खुलाओ और लाओ। अभी राजा का हुक्म हो गया, दुकानदार कहाँ रहता है, ले गए दुकान खोलो, अभी दो राजा बुलाते, तुम्हारा मूल्य ले लो, पैसा ले लो, दो दुकान खोल ले आए। वो फिर गए चीची पी पिए कई खिलौने जो बच्चों को राजी करने की, ऐसे खिलौना का ला कर दे दिया, बच्चों को खिलौना दे दिया, लड्डू जलेबी पूरी साग दादी जितना ला कर दे दिया एक तुम भोजन को, और सब चीजें दे दिए, कपड़े दिए, नौकरों के आगे जाओ इनके घर पर पहुंचा दो सब चीजें, और कहा देखो बेटी तुम किसी तरह की चिंता मत करना, कोई चीज किसी चीज की जरूरत हो तो मेरे को कहना, तुम मेरी कन्या की तरह है, मेरी पुत्री की तरह है, तो इस वास्ते तुम किसी तरह का दुख मत कर। आश्वासन मिला, चीजें पहुंचा दी गई। अब सुबह की वक्त राजा बैठे तो ये एकदम भगवान में मन लग गया, मस्तिष्क सत्संग में गए तो राजा ने पूछा क्या ठग है महाराज, आज तो ऐसा मन लगा, वर्षों से आपका सत्संग करता हूँ पर तो ऐसा मन नहीं लगा जैसा लगा कि कोई उपकार किया हो। दान पुण्य, दान पुण्य कुछ नहीं किया, हमारे उपकार क्या किया वो याद ही नहीं। उसमें कोई रोती थी उसको थोड़ा सा दे दिया, इसमें कोई बड़ा पुण्य में दान किया नहीं, कोई यज्ञ किया नहीं, दान किया नहीं, तीर्थ किया नहीं, व्रत किया नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। कि भाई किसी को शांति पहुंचाई, किसी को आश्वासन दिया है तो हाँ हाँ महाराज एक बात हुई। रात्रि में ऐसी विधवा एक स्त्री रो रही थी तो मैं देखा भी कौन रोती है, वो आई, उनको मैंने कहा बेटी तुम मेरी कन्या है, तुम कोई चिंता मत करते, कोई चीज चाहिए तो मेरे को यहाँ कह देना। अरे बाप के रहते हुए बेटी चिंता क्यों करे, तो मेरी तू पुत्री है, ऐसा आश्वासन दिया। तो वही कारण है, इसमें कोई लाखों करोड़ों रुपया खर्च करने से हो जाए ऐसी बात नहीं है, परंतु एक बात खूब याद रखने की है, जो दूसरों का उपकार करता है सेवा करता है तो कभी कभी ऐसी सेवा बन जाती है। आप चुन करके चाहो कि ऐसी ही सेवा करें तो नहीं मिलेगी, सबकी सेवा करो, सबकी सेवा करते करते कभी ऐसा भी मौका आ जाता है तो उसकी सेवा बढ़ जाती है। पाठशाला में पढ़ते हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं, बड़े बड़े विद्यालयों में पढ़ते हैं, सबके सब आचार्य बन जाए, बीए एमए बन जाए ऐसी बात नहीं है, बट पढ़ते पढ़ते कोई न कोई विषय बन जाता है। तो इस तरह से आप हरदम रात से चिंतन करो, कोई भूखा हो तो अन्न दे दिया, कुछ दे दिया तो ऐसा आप दिया करो रोजाना। अविंध्यम दिव संकुरियात दाना अध्ययन करो भी, कोई दिन खाली नहीं जाना चाहिए, भोजन देना चाहिए, बना बनाया अन्न देने का बहुत ज्यादा महत्व है, कोई भी आ जाए उसको अन्न दो। अतिथि का खास काम है, ब्रह्मचारी का काम गुरु सेवा, गृहस्थ का काम अतिथि सेवा, और वानप्रस्थ का तप और सन्यासी का ब्रह्मचिंतन, ये चारों आश्रमों के अलग अलग धर्म बताए हैं। तो गृहस्थ आश्रम का धर्म है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम है ये सबका माँ बाप है, माँ बाप है गृहस्थ आश्रम। हम कितने बड़े ऊंचे हो जाए परंतु जन्मे तो गृहस्थों के घर में ही है, कल साधु संन्यास हो जन्म है, कल ब्रह्मचारियों के जन्म है। हमारे माँ बाप तो गृहस्थ ही है, आप सारे हाथ जोड़े नमस्कार करें सब, पण हो तो माँ बाप तो आप ही हो ना। माँ बाप पैदा करने वाले आप और पालन करने वाले आप, तो माता पिता तो गृहस्थ ही है, भोजन करते हैं, कपड़ा मिलता है, सवारी मिलती है, आसन मिलता है, बैठते हैं, पंखा चलता है, ये कोई हमने किया है। माँ बाप पालन करे, ऐसे तुम पालन करने वाले हो तो आपका दर्जा ऊंचा नहीं है। साधो संग उपासते ही सततम धन्यो गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम को धन्यवाद दिया है, ये बड़ा ऊंचा है, क्यों सबका उत्पादक और सबका पालक गृहस्थ है। ब्रह्मचारियों का पालक भी, ब्रह्मचारियों का, गृहस्थों का, वानप्रस्थ और सन्यासियों का, सबका पालन गृहस्थाश्रम करता है। अरे गृहस्थाश्रम में भी ये विभाग है विशेष पालन करने वाला। आप भी बाहर से काम करके जाते हो तो आराम मिलता है, गर्म जल दे दिया, ठंडा जल दे दिया, कपड़े दे दिए, कपड़े पहुंचा दिए। एक सज्जन मिले थे, रात के ये काम करते थे, वो कहते थे मैं घर पर जाता हूँ तो मुठ में ही खोल दिया और पजामा लेकर धोती अपन पहन ले, पता दे दिया, हेड लग दिया, सब कर दिया, ऐसे कर बैठ जाता हूँ, मेरी स्त्री सब संभाल कर रखती है, मेरे कपड़े भी, मेरी धोती भी, वही संभाल रखती है, मैं तो आराम से रहता हूँ। तो आपकी सेवा भी ये करती है, हमारी सेवा भी ये करती है, तो इनमें सेवा करने की शक्ति है। इस दर्जा ही इसका ऊंचा माना गया है, ये माँ है। अन्नपूर्णा, जैसे भगवान शंकर की अन्नपूर्णा माँ है, ऐसे हमारी माँ है, अन्नपूर्णा पालन करती है। एक संत थे, एक संत बैठे थे, एक माई आई, बाबा जी मैं केला लाई हूँ, केला लो, केला पा लो। कहते मैया क्या केला पाए, हमारे मन में तो बड़ी हलचल हो रही है, मैया केला क्या पाए, हमारे मन में तो बड़ी चिंता हो रही है। बाबा जी आपके मन ने जो बात पकड़ी है वो छोड़ दो, लो केला लो। महाराज संत इतने खुश हो गए कि केला भी देगी ज्ञान भी देगी। कोई बात पकड़ी हो छोड़ दो, चिंता मिट जाएगी। और क्या चिंता, क्या कोई कोई बात पकड़ लेते हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये दो में से एक पकड़ो चाहे दोनों को पकड़ो, सब चिंता हो जाती है, अस्तित्व से छोड़ दो शांति हो जाती है। तो ये तो गुरु मिल गई हमारी, मैया गुरु मिल गई। तो इस तरह से इनमें दया है। आप कितने पास में होकर गुजर जाओ, कोई बाजार में बैठा है भूखा तो आपके मन में नहीं आवेगी, और ये देख लेगी एक दो दिन से बैठा है कि बाबा जी कुछ खाओगे, कुछ लोगे। भगवान ने इनको हृदय दिया है, क्योंकि आपका इनका सबका पालन माँ करती है कि नहीं, तो इस मातृशक्ति है, ये इनको मातृशक्ति कहता हूँ, ये मातृशक्ति है, सबका पालन करती है, हृदय है। आजकल की छोरियों में स्वार्थ ज्यादा हो गया है, ये हमारा बहुत बिगाड़ हो रहा है, भारतवर्ष की चीज नहीं है ये। खराब हो जाती है, स्वतः है अपने छोटे भाई और बहन को, बड़ा भाई और बड़ी बहन होते वो गोदी में रखते हैं, माँ कहती बेटा ले जाओ, बच्चे को ले जाओ, खेलाओ, गोदी ले लेते हैं, खेलाते हैं। परंतु ये बात देखी गई है कि बालक को कुछ मिले तो वो खा जाता है, और कन्या है उसको मिलता है तो रख लेती है, छोटे भाई को देखा, छोटे भाई को देती है, भाई की छोटी बहन है, छोटा भाई है, गोदी में तो रख लेता है, परंतु वो याद ही नहीं रहता, जब मिलता तो वो खा लेता है। बड़ा भाई बड़ी बहन है वो खाल रखती है, छोटे भाई बहन हो देती है। तो बचपन से ही सेवा करने का स्वभाव है इनमें, तभी तो गृहस्थ का काम चलता है। आजकल कहते हैं हमारा तो दर्जा बरोबर है, बरोबर नहीं, तुम्हारा दर्जा ऊंचा है, बरोबर दर्जे में तुम नीची हो जाओगी, स्वार्थी हो जाओगी, बरोबर दर्जा इनके बरोबर नहीं है, इससे ऊंचा दर्जा है आपका सबके पालन करने का, हम बरोबर दर्जा करना चाहते हैं। एक स्त्री लड़की थी, उसको मैंने कहा भाई पति को प्रणाम करना, कि पति को प्रणाम क्यों करें, हम वो छोटे दर्जे गए हैं, पति हमारे को करे। एक जवान लड़की ने जवाब दिया, तो ये भी हम तो बरोबर के हैं, बहनों बरोबर से काम नहीं चलता, कहते गाड़ी के दो पहिया होते हैं, इस तरह गृहस्थ के दो पहिया है। अरे दो पहिया अलग अलग हो तो गाड़ी चलती, दो पहिया एक छोड़ कर दो चलेगी गाड़ी, एक ही हो जाएगी सब तो गाड़ी नहीं चलेगी। अपना अपना अधिकार अधिक होता है। बाहर जितना काम करना, कमाना लाना करना, ये पुरुषों का काम, और भीतर की ये महारानी है, ये राजा है भीतर की सब, तो वहाँ काम इनका है, बाहर काम आपका है। बाहर काम में ये जाएगी तो अफसरों की घुटी सह नहीं सकेगी, रोन लग जाएगी। आप कठोर होता आप सह लेते हो, इनका हृदय कोमल है, तो ये नौकरी आदि काम के नहीं है करते हैं। आजकल की तो बात ही अलग है। आजकल तो हमारी बहनों ने माँ बनना बंद कर दिया, बन जाती है माँ बनने से बंद कर दिया। हाँ नहीं विशेष क्षति नहीं, सीता जी अगर नहीं मिले तो नारी हान विशेष नहीं, भाई कहाँ मिलेगा। तो स्त्री जाति की महिमा स्त्री की नहीं है, मैंने स्त्री शब्द की तो है ही, नारी जाति की नहीं है। भीतर की ये महारानी है, ये राजा है भीतर की सब, तो वहाँ काम इनका है, बाहर काम आपका है। बाहर काम में ये जाएगी तो अफसरों की घुटी सह नहीं सकेगी, रोन लग जाएगी। आप कठोर होता आप सह लेते हो, इनका हृदय कोमल है, तो ये नौकरी आदि काम के नहीं है करते हैं। आजकल की तो बात ही अलग है। आजकल तो हमारी बहनों ने माँ बनना बंद कर दिया, बन जाती है माँ बनने से बंद कर दिया। हाँ नहीं विशेष क्षति नहीं, सीता जी अगर नहीं मिले तो नारी हान विशेष नहीं, भाई कहाँ मिलेगा। तो स्त्री जाति की महिमा स्त्री की नहीं है, मैंने स्त्री शब्द की तो है ही, नारी जाति की नहीं है। रामचंद्र जी महाराज वनवास में जाते हैं तो केकई माँ ने हुक्म दे दिया, महाराज दशरथ जी ने आज्ञा दे दी, वचन ले लिया ना केकई ने। तो वनवास में जाते तो माता कौशल्या से जाकर मिले, माँ कौशल्या के चरणों में पड़े, नमस्कार किया तो कहा बेटा आज राजगद्दी होगी तो सवारी निकलेगी, सवारी निकलेगी तो शहर में कितनी घूमेगी क्या पता कब आओगे, तो अभी कुछ खा लो मीठा खा लो। ये खा ले बस खा ले, इसलिए किसी से तुम भोजन कर लो, ये तो देरी हो जाएगी भोजन में। तो राम जी ने कहा कि माँ मेरे को तो राज्य मिल गया, जंगल का राज्य वनवास में तुम जाओ ऐसा हुक्म हो गया। पूछा क्या बात है तो सब बात कही। तो सबसे पहले वो मुझे तुम्हारे पिताजी ने वनवास में जाने के लिए किया है तो जन जाहु जान बड़ी माता, हमारे लिए तो दशरथ जी महाराज देवता है ईश्वर है परमात्मा है, पर तुम्हारे लिए दर्जा मेरा बड़ा है, पिता से 10 गुना कहीं 100 गुना अधिक माँ का अधिकार होता है। तो पिता तुम्हारे कहते हैं जंगल में जाने के लिए वनवास में, मैं कहती हूँ कि यहाँ घर पर रहो, तो बसर किसका बलवान होगा, मेरा बलवान होगा, तो मेरा कहना मानना होगा। तो जन जाओ जान बड़ी माता, माँ का दर्जा बड़ा मान करके तुम जंगल में मत जाओ, पिता की माँ की दोनों की आज्ञा है तो माँ की आज्ञा तेज होती है, माता से पिता से माता पिता रहो। और राधे श्याम सीता राम गौरी शंकर लक्ष्मी नारायण, पहले नाम माँ का लिया जाता है, पिताजी के नाम पीछे रहते माँ बाप कहते हैं, बाप माँ नहीं कहते माँ बाप कहते, तो माँ का दर्जा ऊंचा है। तब कहा कि माँ इधर तो आप एक कहती हो, उधर हमारी दूसरी माँ कह रही है, जो पितु मात कहे वो बन जाना तो काना शत अवध समाना, जो दूसरी छोटी माँ ने कह दिया है तो 100 गुना अधिक वो है, पिता से 100 गुना अधिक मेरा अधिकार है, मेरी अपेक्षा 100 गुना उस माँ का अधिकार है तुम्हारे पर, तो वो माँ कह जिसे करो मेरा घड़ा नहीं। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति वैदिक संस्कृति, ये माँ का आदर है, हमारे माता का आदर है। आज दुनिया कहती हम नारी जाति को उत्थान देते हैं, नारी जाति का शास्त्र में तिरस्कार किया है, हम सत्कार करते हैं और गर्भ मां से गिरा देते हैं, क्या है परीक्षा करी लड़की है गिरा दो। ये माया भी करती है महाराज, गिरा देती है कई जगह, पति कहता है मर गया ये गिरा देती है, थाने जाकर गिरा दिया गया। कितना बड़ा भारी पाप है। हमारे यहाँ हत्या ब्रह्म हत्या बताइए, गो हत्या ब्रह्म हत्या, ये हत्याओं में बहुत बड़ी हत्या ब्रह्म हत्या है। चार महापातक है ब्राह्मण को मारना, सोने चांदी और रत्नों की चोरी करना, मदिरा पान करना और गुरु पत्नी गमन करना, ये चार महापातक है, बहुत बड़े पाप माने हैं, महाहत्या है ये। पराशर स्मृति में आया है कि यत पापम ब्रह्म हत्याया, जो पाप ब्रह्म हत्या का होता है द्विगुणं गर्भपात में, उसे दूना पाप लगता है गर्भपात का, दो ब्रह्म हत्या जितना दूना पाप। और प्रायश्चित में तस्यास्ति, उसका प्रायश्चित नहीं है, पति को चाहिए तस्यास्ति वो भी दी उसे त्याग कर दे, ब्रह्म हत्या करने वाली है, भ्रूण हत्या करती है, गर्भपात करती है, तो गर्भपात की महान निंदा है। मैं तो जहाँ जाता हूँ यहाँ जोड़ कर प्रार्थना कर देता हूँ, मैं भिक्षा पाया करता हूँ घरों के आ जाए तो भाई हमारे को अन्न मत देना। जिस घर में गर्भपात हुआ है उस घर की विद्या में अन्न मत देना, बहुत भ्रष्ट हो जाएगी बुद्धि हमारी, जैसा खावे अन्न वैसा पड़े मन। तो मेरे पर कृपा करना, गर्भपात करने वाले का घर की विद्या मांग पड़े, उसका अन्न जल भी महान पतन करने वाला महापाप का होता है। अन्न खराब हो जाएगा तो यादृशम भक्षेत चान्नम बुद्धिर्भवितादृशी, जैसा अन्न खाओ वैसी बुद्धि होती है। तेल का दीपक जलाया जाए, दीपक तिमिर मसनाती, वो अंधेरे को खा जाता है तो पैदा काजल होता है, काला खाकर काला पैदा होता है। इसी तरह से अन्न जैसा खाए वैसी बुद्धि होती है। तो मैं तो कहता हूँ मेरे को बचाना भाई, कम से कम आपको मैं सुनाता हूँ तो अच्छी बुद्धि होगी तो अच्छी बात सुनाऊंगा, अरे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी तो अच्छी बात कहाँ से रहूंगा। इस वास्ते भाई उस घर का अन्न जल हमारे को मत देना जिसमें भ्रूण हत्या होती है, इतना अपवित्र काम ये हमारी बहनों कर बैठती है। कहने से मानती नहीं, कई मानती है कई नहीं मानती है, कई बहुत सी मानती है, परंतु ऐसे काम करते बहुत पाप का काम है। नसबंदी करती है, ये महाराज ऑपरेशन कराती है, राजी होती है, महान पाप करती हो आप। आपके यहाँ बच्चे नहीं जन्मेंगे, आप नसबंदी कराते हो तो आप नहीं बचेंगे। बच्चे तो बालक जो होने वाला है तो पुरुष होगा, स्त्री स्त्री होगा, जन्मेंगे। अनादिकाल से सृष्टि आई है, वेश्य का वेश्य के साथ, ब्राह्मण का ब्राह्मण के साथ जो संबंध होता है अपनी अपनी जाति में बरोबर संतुलन रहता आया है। इस तरह से भगवान के रूप से बरोबर पैदा होते हैं। अरे आप मार दोते वैसे नहीं होगा, अरे आप यहाँ बालक नहीं पैदा करोगे तो बालक पैदा ईसाइयों में होगा, मुसलमानों में होगा। महाभारत की सेना में युधिष्ठिर की सेना और दुर्योधन की सेना दोनों नौ नौ अक्षौणी थी। कृष्ण भगवान की एक अक्षौणी, शल की एक अक्षौणी सेना, दुर्योधन ने पांडवों के पक्ष की ले ली तो नौ और दो तो ग्यारह हो गई, या दो गई तो पिछले सात रह गई। दो गुना फर्क में चार गुना फर्क पड़ता है, दो सेना लड़ने से चार सेना फंस गई। ऐसे आपके बच्चे, आप तो जन्म नियर हुआ बनेंगे, आपसे दुगने वो पैदा होंगे। जहाँ काम पड़ेगा तो हिंदू तेरा मुस्लिमों को नहीं मारते, मारने पर मारे वो तो हर एक चीज है, परंतु उनके धर्म ग्रंथ में लिखा है कि मुसलमान के सिवाय लोगों को मार दो, मूर्ति पूजा कर तुम्हें मार दो। बोले मूर्ति पूजा में क्या उनका नुकसान है, यदि उसको तो मार ही दो, ये उनका धर्म ग्रंथ कह रहा है, कुरान शरीफ कह रहा है कि मार दो, सिवाय मुसलमान के मुसलमान बना लो और नहीं तो मार दो, खत्म करो उनको, जी नहीं मत दो। तो फौज में वही भर्ती होंगे, ज्यादा होंगे, वही हम दो हमारे दो हजार आदमी है, उसमें हम दो हमारे दो हजार रहे, अरे हजार ही पैदा हुए, अरे मृत्यु बंद हुई नहीं तो क्या अंत होगा, खत्म हो जाएंगे। हमने सुना है कि स्कीम ऐसी है कि 100 वर्षों के भीतर हिंदू नाम का कोई नहीं रहे, सब खत्म हो जाएगी, ऐसी स्कीम है जो देखने में ऐसी आती है, ऐसी सुनी है, पक्की बात हमारे पास नहीं है, क्या पता है कैसी है, और सुनी मैं जरूर है और कार्य देखते हैं ऐसा ही। जयपुर में काम पड़ा कि एक बालक होना चाहिए, वो विवाह करते तो उनके एक बच्चा होना चाहिए, अब आधा तो पहले ही कर दिया, फिर मरे खत्म हो जाएंगे। ऐसे हमारी बहन और आप भाई लोग ऐसा काम कर रहे हैं। मैं आपकी संख्या बढ़ाने की दृष्टि से नहीं कहता हूँ, हमारे शास्त्रों में परमात्म तत्व की प्राप्ति बहुत सुगमता से बताई है, तो फिर आप चले जाओगे तो हमारी बातें कौन सुनेगा? क्या ईसाई सुनेंगे? क्या मुसलमान सुनेंगे? जीव के कल्याण की बात, पतिव्रत पालन से कल्याण हो जाए, गुरु आज्ञा पालन से कल्याण हो जाए, माँ बाप के कहना करने से पुत्र का कल्याण हो जाए, राजा की आज्ञा पालन करने से कल्याण हो जाए प्रजा का, मालिक की आज्ञा पालन के नौकर का कल्याण हो जाए, ऐसी विलक्षण बातें मैं शास्त्रों में बताई है। वो मौका कल्याण का इनाम मनुष्य शरीर में, मुसलमानों में ईसाइयों में बड़े बड़े सी बात बताई, मुसलमानों की नहीं सुनी है वो तो मार दो, ईसाइयों में बड़ा उदार भाव है कि सब भाई है, वो भाईचारा रखो, ये भाई है, हमारे यहाँ भाई नहीं है, वासुदेव सर्वम यो माम पश्यति सर्वतः, सब जगह भगवान है भगवान है भगवान में, राशीय राममय जगत सब जगत जाने करो प्रणाम जोर जो पानी, वो सब जी कहते हैं सीताराम 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 है, सभी अपना इष्ट देव है, बताओ किसी मजहब में हुए बताइए, ऐसा उत्तम मजहब नष्ट हो जाएगा तो क्या दशा होगी हमारी, कैसे जीवों का कल्याण होगा, बड़ा भारी अनर्थ हो रहा है, ये संतति निरोध से बड़ा अनर्थ है, परंतु मानते नहीं, ना भाई लोग मानते ना बहना मानती है, मेरा कहना मानते है, क्यों क्यों के ऐसी बात आती है। अभी नागौर में सत्संग हुआ तो एक भाई आकर बोला कि महाराज मेरी स्त्री ने ऑपरेशन करा लिया, अब क्या करूं मैं, मेरे को पता नहीं था, पर ब्रह्म हत्या से बड़ा पाप है, तो मैं दूसरा ब्याह कर सकता हूँ? वो बिल्कुल करना चाहिए अब दूसरा ब्याह, और उस स्त्री को कहा बहन तुम भी ऐसा करो सम्मति दो, क्योंकि आपको संतान नहीं होगा तो आप दूसरा ब्याह कर लो, जिसे संतान हो जाए। रोने के जैसा हो गया, ऐसा महाराज इतनी हत्या करी, मेरा पाप कर लिया, तो लोगों का असर पड़ता है, कहने का असर होता है, लोग सुनते हैं, बहनों माताएं कहीं सुनती है। कलकत्ते में एक बहन बहुत रोने लग गई कि मैंने भी गर्भपात तो किया है, मेरी भिक्षा लो। मैं भिक्षा कैसे लू, मैं तो गर्भपात करने वाले की भिक्षा लेता नहीं। उसने बहुत कहा तो मैंने कहा 3 लाख नाम लो, 12 महीना तक आप भिक्षा ले लाए भगवान का नाम लो, ज्यादा दिमाग हो तो करो क्या होगा, 12 महीना 3 लाख रोजाना का नाम लो भगवान का, 1.25 लाख नाम लो। तो फिर मैंने उसकी भिक्षा ले ली, नहीं तो मैं भिक्षा मलिनता का अन्न बहुत खराब होता है, नहीं लेता मैं तो। ऐसे इसका निषेध करो भाई आप लोग, जिससे ये तो बच जाए, तो हमारे शास्त्रों की बात कोई सुने, कोई अनुष्ठान भी करे, कोई पढ़ेगा तो कल्याण होगा, नहीं तो किसका कल्याण हो। आपने जीव का कल्याण करना बंद कर दिया, पाप कितना बड़ा भारी किया है, जो अपना कल्याण कर सकते है वैसे जन्म ही नहीं लेने देते, आने ही दे देते घर में, कैसे जीव का कल्याण होगा। तो ऐसी कृपा करो, इसको निषेध करो। तो आप माँ बनते हो, माँ का कितना दर्जा, कौशल्या कहती है कि तुम्हारे पिता से दर्जा मेरा बड़ा है, अरे मेरे से छोटी माँ का दर्जा बड़ा, चाची ताई है आपकी, उसका दर्जा लड़के के लिए बड़ा होता है, माँ से बढ़कर उसका दर्जा है। इस वास्ते वे भी कहती है हमारे तो पुत्र ही है, ये बेटा ही है, ऐसे माताएं कहती है। सुना है मैंने कि हमारे घर में ये हमारे जेठ के देवर के लड़का हमारा लड़का ही है, हमारे तो ऐसी सेवा करते हैं। मैंने देखा भी अपने गीता प्रेस में रहने वाला रामेश्वर मुखलानिया, छोटे पहले ब्याह का बेटा है वो, दूसरा ब्याह हुआ तो उसके बेटा हुए अलग, वे बेटा इतनी सेवा नहीं करती जितनी वो सेवा करता है, अपने बेटों के पास कलकत्ते न रह करके गोरखपुर में रहती है, देखा है मैंने देखा है आप जानते हैं, उस बेटे के पास थी जो पहली का बेटा दूसरे ब्याह की वो है स्त्री, उसको ऐसा आदर करता है, अपने जाए हुए बेटों के पास न रहकर वहां रहती है, मेरा तो बेटा ही है ऐसा तो आदर करता है वो। तो आपका कर्तव्य यह है कि दूसरी माँ हो, चाहे चाची है चाहे ताई है काकी है बड़ी माँ है, उसे कहते तो बड़ी माँ कहते हैं उसको, हम बड़ी माँ कहते हैं, हमारी माँ तो छोटी माँ, वो हमारी बड़ी माँ। तो बड़ी माँ का आदर तो माँ से ज्यादा ही होना चाहिए छोटी माँ से। तो ऐसा हमारी रीति है, ऐसा आदर करो और प्रेम का बर्ताव करो और भगवान को याद करो। तो ये प्रेम का बर्ताव, दुनिया का उपकार, ये करने में आप लोग कर सकते हो, ये मनुष्य का अधिकार है। बहनों भी दूसरा का हित कैसे हो, सबकी सेवा कैसे हो। पक्षपात ये कर लेती है, अपने पति पुत्र को जैसा परोसती है ऐसा दूसरों को नहीं परोसती। बहुत सी ऐसी पक्षपात करती है, वो त्याग दो। सबको ठीक तरह से हाथ में जो आवे सबको बरोबर काम पड़े, तो अपने बच्चे की अपेक्षा दूसरों के बच्चों को अधिक प्यार करके अधिक। दो चीज घर में बच्चे आपके होते हैं, देवरों के होते हैं, जेठों के पुत्र जेठ जेठ के होते हैं, और आपके नणंद के बालक होते हैं, और आप सास के भी बालक होते हैं। इतने तो बालक है, सास के, नणंद के, देवर के, जेठ के, आप पांच ही तो पुत्र हुए। पांचों में अपने पुत्र की अपेक्षा उन बालकों का ज्यादा प्यार करो, ऐसा स्नेह करो वे बच्चे खेलते खेलते आपकी गोदी में आ जाए। बच्चा बहुत समझदार है, आप बड़ा समझते हो, ऐसे घुटनों को बचाता है, देखता है सामने, आपकी प्यार की दृष्टि हो तो गोदी में आ जाएगा, नहीं तो लौट जाएगा पीछे। तो अपनी माँ की गोदी छोड़कर आपकी गोदी में आ जाए तो समझना चाहिए आपने बहुत अच्छा काम किया। राम जी केकई माँ के पास सोते थे, वही खा पीते, वही रहते, वही सो जाते थे। भरत जी के साथ स्नेह था ज्यादा, तो भरत की माँ के पास ही रहते वो। इतना अधिक स्नेह केकई माँ करती थी, और वो सरस्वती के कारण से बुद्धि भ्रष्ट हुई, वनवास का वरदान मांग लिया, जिसमें कितना संकोच हुआ। और भरत जी ने तो कह दिया तेरे माँ कैसे कहो। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब तक जीती रही केकई तब भरतलाल ने माँ नहीं कही। अब तेरे को माँ कैसे कहो, राम जैसे बेटे को तू वनवास में भेज देती है, तू माँ कहना ना राज में। महारानी साहब पधारो, भरत जी महाराज महारानी साहब, महारानी साहब कहते हजूर आप पधारो या बेटा। वहाँ सिंहवेरपुर में गई तो बेटा मैं यहाँ रह जाऊँ। महारानी साहब आप महिला में रहो, बड़े बड़े महिला में यूं क्यों रहे, मेरे तपसी के पास में मेरे तो यह महल नहीं है, मेरे बाबू की जगह मैं तपसी के जीवन बिता जाऊँ। महारानी साहब तुम महिला में रहना चाहिए बड़ी, उसको महल बड़े खाले लगते हैं। चित्रकूट में गए तो माँ केकई पहले जाते हैं, नमस्कार करते हैं, और के माँ आपका दोस्त नहीं है ये तो देवी का ऐसा ही होनहार था, किन माने माने नहीं होनहार से हार। तो ऐसा घरों में भरता होना चाहिए, जैसा राम जी है जो कृष्ण जैसे अधिक केकई को मानते हैं। लक्ष्मण जी वे तो कहते हैं मैं माँ बाप को जानता ही नहीं, मैं तो राम जी आपका ही जानता हूँ, हमें माँ बाप सब है। सच्ची बात कहता हूँ कि तुम रहो घर पर, भरत शत्रुघ्न नहीं है, शत्रुघ्न भी नहीं है, भरत भी नहीं है, अरे मैं जंगल में चला जाऊंगा, महाराज अकेले रह जाएंगे। धर्म है कि महाराज धर्म उपदेश ये था, जो धर्म उसको दो, जो कीर्ति सुगति मति बुद्धि और कल्याण जिसको चाहिए, मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे तो आपकी चरण में रहना है। तो ऐसे भाइयों का प्रेम स्नेह रखो आपस में, स्नेह करो, एक एक की सेवा करो, एक एक को सुख पहुंचाओ, जिससे आपका सबका सब लोग और परलोग दोनों सुधर जाए। तो मनुष्य शरीर तभी सफल है बहनों, ऐसा प्रताप करो, आपस में स्नेह रखो। घरों में काम धंधा मैं करूं, तुम बैठो मैं काम करूं, ऐसा होना चाहिए। चीज वस्तु आ गए तो दूसरों को दो। भाई भाई जा रहे हैं कलकत्ता, तो एक आदमी ने फल पूरी साग ले दिया तो दो पा लेते हैं, कोई परवाह नहीं करते, इसका खर्चा कैसे करते। माइया में अलग अलग हो जाने पर सिल्वर की खास कटोरी भी रह जाए उसे घर को रह गई, ऐसा ईर्ष्या होता दीरण जेठानी के। बहनों ऐसा मत रखो, बहनों एक घर पैदा हुई है वो बहनों आपकी नहीं है, और एक घर में ब्याही गई वह दीरण जेठानी आपकी है, वो बहन से विशेष आपका आदर नहीं है। है ही कुटुम्ब आपका, बहन दूसरे घर की है, आप जेठानी आपके घर की है, तो देवरानी जेठानी का आदर करो, देवरानी को बहू की तरह कन्या की तरह मानो, आदर करो। देवरानी को चाहिए माँ की तरह जेठानी का आदर करे, ऐसे आपस में स्नेह करो तो घर में प्रेम रहेगा। प्रेम के कारण से बच्चे स्नेह करने वाले पैदा होंगे, लड़कियां भी अच्छी पैदा होगी, जिससे लोग लेना चाहेंगे। जिस घर में देवरानी जेठानी बैठती है सगों को मालूम हो जाए तो उन घर की लड़की लगानी चाहते, तो यहाँ की चिड़गारी वहाँ कौन लगा लाए लगा देगी, वहाँ इनके घर में तो लाए लगती है। जो धीरानी लड़ती है तो छोरी ऐसी चिड़गारी हम नहीं लेंगे, तो सगे संबंधियों में भी अवशेष होता है। लड़की अच्छी होती है तो दो कुल का उद्धार करती है। जैसे महाराजा जनक जब गए चित्रकूट तो बड़े बड़े अहलकार थे, वे सीता जी को देखते हैं तो सीता हमारे महाराजा जनक जी की कितनी प्यारी पुत्री, राजघराने की प्यारी पुत्री, आज बैठे रहने के लिए मकान नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है। ये दशा जब राज की याद मन देखी तो आंसू आने लगे, हमारे राजा की कितनी प्यारी पुत्री है बाबूली ने। महाराजा स्नेह बहुत था सीता जी पर, जब पालकी चढ़ाने लगे तो रो पड़े, मिट्टी महामर्याद ज्ञान की। वो समझ कहते हैं ज्ञानी में विकार नहीं होता, वो महामर्याद भी मिट गई, बेटी तो चली जाएगी, सीता सिर पर आ जाएगी, बेटी तो आज चली जाएगी। तो जब वह चित्रकूट में मिले तो चरणा मगिर तो सारे लगाया, तो महाराज भी जनक जी महाराज के छाती पर उसका सिर है, उम्र हाथ देते हैं और जनक जी कहते हैं पुत्री पवित्र किया कुल रहो। दूसरे तो दुखी होते हैं और मरा धर्म भी राजी होते हैं, बेटी तेरे दो कुल को पवित्र कर दिया, हमारे कुल को भी पवित्र कर दिया, दशरथ जी के कुल को पवित्र कर दिया। राज घराने में रहना, दशरथ जी महाराज कहते हैं कि सीता रह जा तो मेरे प्राण रह जा, पर पति की सेवा में जाओ। तो वहाँ पर महलों का सुख छोड़ करके पति सेवा के लिए तो आई बेटी, दोनों कुल पवित्र हो गए हमारे। लोग में भी ऐसा होता है जो अच्छे लक्षण होते हैं तो ये कहती है खुद भी अच्छे माँ बाप की बेटी है, बड़े अच्छा है, तो ससुराल में भी उसका जश होता है। पुत्र अच्छा होता है तो एक कुल को ठीक करता है, पुत्री दो कुल को उद्धार करती है। बहनों माताओं में बड़ी शक्ति है, इस तरह से घरों में आपस में प्रेम रखो, भगवान को याद करो, सेवा करना और भगवान का भजन, ये दो बात मनुष्य की खास मनुष्यता की है। तो करने की चीज है ये, सेवा करने की है, सुख पहुंचाने की है, दुख अपने सहन करो, कोई आफत आओ तो अपने बोले हो। भोजन बनाओ तो सबसे पहला किसी चीज के बालक हुआ है वो है जच्चा घर में, तो उसको पहले भोजन कराओ। बेटे को ब्याह है, लड़की आई है, उस बहू को पहले भोजन कराओ। धीरानी जेठानी नंद के बालकों को पहले भोजन कराओ, पीछे अपने बोलो बालकों को। इस तरह से बर्ताव करो प्यार का स्नेह का। अरे वो बहू आई है उसका लाड प्यार करोगी, क्योंकि उनको याद आती है माँ, माँ जैसा प्यार करती थी ससुराल में आ गई बेचारी, तो आप सास आप स्नेह करोगी तो वे समझेगी हमारी तो माँ ही है, हमारे घर अजामी माँ है। तो आप प्यार करोगे तो बड़ी होने पर बूढ़ी होने पर मैं आपकी सेवा करेगी, अगर आप सेवा नहीं करोगी तो फिर बूढ़े होने पर उसकी मन में आएगा उसमें आपने सेवा नहीं की, अब कैसे सेवा करेगी वो। बहू आ जाए उसमें जो उनके साथ में मिठाई आवे फल आवे उसकी प्रशंसा करो, थोड़ा आवे तो घर से मिठाई बना करके लोगों में वितरण करो, हमारी बहू आई है वो मिठाई लाई है घरों में दो। घर से खर्चा लगता है ना, अगर घर में बनाओ तो खर्चा लगता है, अरे 100-200 रुपया लग जाए, परंतु तो बहू सदाती तुम्हारी हो जाएगी तो 100-200 में एक आदमी खरीदना सस्ता ही तो है। तो मैं कह सुनाई है सदा के लिए राजी हो जाएगी कि मेरी सास ने मेरी माँ की महिमा के लिए घर से मिठाई बनाकर मिलाकर के सब जगह बांटी। इस तरह से लड़का लड़के का प्यार करो, लड़की का तिरस्कार मत करो, लड़की कन्या है वो देवी भगवती का स्वरूप है साक्षात, उनका तिरस्कार मत करो, गर्भपात बिल्कुल मत करो, पालन करो। और अब लड़कियों के कारण से ऐसी बात हो गई है, हमारे जयपुर में कुंवारे लड़का लड़की गिने गए, हिंदू समाज के लड़का लड़की गिने गए, तो गिनने में लड़कियां थोड़ी हो गई, इतनी मेहनत। हाँ 3000 लड़के हैं तो 2000 लड़की है, तो 1000 तो कुंवारी ही रहेंगे ना, वो वंश नष्ट होगा तो जाति नष्ट हो जाएगी। इस वास्ते लड़कियों का ऐसा तिरस्कार मत करो। आप मातृशक्ति हो तो बच्ची भी मातृशक्ति है, किसी वंश में जाएगी वंश को बढ़ाएगी, तो वो तो मातृशक्ति है, वो मामूली मत समझो उस बच्ची को। मातृशक्ति की हत्या करना पिता आदि का सबसे बढ़कर के हत्या है, ऐसा मत करो, कभी मत करो बहनों। एवं बच्चों का पालन करो, जिसे संसार में जस और आप पाप से रहित हो जाओ, आपस में प्रेम का बर्ताव करो, घरों में काम धंधा आप करो, आदर सत्कार दूसरों को दो, आराम दूसरों को दो, और परिश्रम आप भोगो, ऐसे स्नेह करो। बड़े घरों में बड़ों के चरणों में नमस्कार करो। जेठानी है, बड़ी ननद है, सास है, सुबह शाम दोनों वक्त नमस्कार करो। कहते हैं होली दिवाली का करते हैं तो हल्दी वो तो खर्चा ही करना पड़ता है, रोजाना खर्चा तो करना पड़े नहीं, नमस्कार करो तुम्हारे ये मुफ्त तो नमस्कार होता है, सस्ता पड़ता है नमस्कार, तो सुबह सुबह नमस्कार को तो लड़ाई नहीं होगी, लड़ाई नहीं होगी, घर में शांति रहेगी, नहीं तो घर में लड़ाई में दूसरों का अगर बात करोगे सास हमारी यूं करती है, वो हमारी यूं करती है, तो वे सुन लेगी, फिर कहते कुत्तियां लड़ियां लड़ती है आपस में, फायदा नहीं है। प्यार से रहोगी तो सब लोग प्रशंसा करेंगे, और घर में लड़ाई होने से लक्ष्मी नष्ट होती है। जहाँ संपदा संपत्ति नाना, जहाँ कल है तहाँ विपत्ति नाना, संपत्ति से संपोगन, ऐसे संपर्क को घरों में सुधार करो, और भगवान के नाम का जप करो। तो करने की है सेवा, जानने के लिए है आत्मा, स्वयं को जानना है और मानना है परमात्मा को, हमारे परमात्मा ईश्वर है, उसको याद करो, उसका नाम जप करो, कीर्तन करो, कथा रामायण आदि सुनो, पढ़ो, पढ़ाओ, पाठ करो, ये भगवान की याद करो और सेवा करो। अपने आत्मा का तो ध्यान करना है, और परमात्मा को मानकर भजन करना है, और दुनिया की सेवा करना है, तो तीनों शक्तियों का इसी तरह सदुपयोग करो तो मनुष्य जीवन सफल हो जाए, नहीं तो पशुओं की तरह चले जाओगे। पशुओं से नीचा हुआ समझे, बिनु पशु पुत्र विषाण, गोस्वामी जी ने लिखा है कि उसे सींग और पूंछ नहीं है, ऐसा बिनु पशु पुत्र तो भद्दा पशु हुआ, जिसके पूंछ नहीं और सींग नहीं वो पशुओं में भद्दा पशु है। तो मनुष्य सेवा नहीं करे, भजन नहीं करे तो भद्दा पशु है, निकम्मा बेडोला पशु है। इस तरह से भाई सेवा करो, प्रेम का बर्ताव करो, शास्त्रों को पढ़ो। अभी तो बड़ी अच्छी बात है, गीता प्रेस का साहित्य बड़ा सस्ता है और सुगम है, अच्छा है, फिर से पढ़ने का मौका है। कल्याण पढ़ो, ये पुस्तकें पढ़ो, सस्ते भाव से मिलती है। छोटी छोटी पुस्तकों मैंने देखा, एक मेरे पुस्तक कल मिली जिसका 60 रुपया है, 8-10 रुपया हो अपने गीता प्रेस में, 1 रुपया हो जाता तो 60 रुपया है। ऐसी पुस्तक देख रहे हैं दूसरों की, गीता प्रश्न की देख रहे, उनको बिलान करो। आप तो व्यापारी हो, आप तो समझते हो कागज के क्या भाव है, स्याही का क्या भाव है, मजदूरों की क्या मजदूरी है, ये सब बनाकर जो बेच कर देते हैं, यदि सस्ती कैसे शुरुआत हुई, तो प्रचार करने के लिए, हित करने के लिए घाटा खाकर बेचते हैं। तो उन पुस्तकों को पढ़ो और अपना जीवन शुद्ध निर्मल बनाओ। अब कोई बात रह गई हो, मेरे में कोई गलती रह गई हो बात की, तो वो पूछो, सुधार कर रहे हैं अपना, कोई शंका हो तो पूछो। क्या कहते हैं ब्राह्मण को मार देना, पढ़े लिखे पंडित ब्राह्मण को मार देने की महान हत्या है, उसके द्वारा कितना उपकार होता है दुनिया का। ब्राह्मणों निरागुण अविद्योग सविद्यो वहा ब्राह्मणों निरागुण गुरु है ब्राह्मण, उसको मार देने को ब्रह्म हत्या कहते हैं, ब्राह्मण को मार देने का नाम ब्रह्म हत्या। बड़ा पाप है, उससे दूना पाप गर्भ गिराने का है, दूना पाप ब्रह्म हत्या से। सरल विधि है कि मन से तो नाम लो और समझे, गिनती करो, राम 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 राम, 10 बार किया मैंने, तो मन से ही गिनती करो, मन से ही राम नाम लो, मन लगेगा तो गलती होगी, अगर मन चला गया तो फट भूल जाओगे। ऐसे कम से कम लगातार 100 नाम ले लो आप, तो बड़ा भारी काम किया आपने। 10-15-20 लिया, मन चला गया, नहीं रहा, तो फिर एक से शुरू करो। बिना विघ्न बाधा के 100 नाम ले लो, चाहे घंटा, डेढ़ घंटा, 2 घंटा लग जाए, तो बड़ा भारी काम होगा और मन लगेगा ही, नहीं लगेगा तो वो कर लेगा। सीधा सरल उपाय है। है जी, बड़ी बड़ी आबादी है, मुसलमान तो 7-7 लड़के एक एक के मुसलमान के, तो बढ़ी हुई आबादी तो बढ़ रही है ना। ईसाइयों की बढ़ रही है और मुसलमानों की बढ़ रही है, हिंदुओं की घट रही है, तो बढ़े तो सबको रोको, पर हिंदुओं को ही रोकना क्यों? कोई रोको, कानून बनाओ तो सबके लिए बनाओ। दूसरे देशों में पहले ये चला था, अब मैंने पढ़ी है एक बर्थ कंट्रोल पर एक लिखी हुई मुसलमान की पुस्तक है, उसमें दिया है कि दूसरे देशों में ये पहले किया था, तो वो कहे हम मर जाएंगे, अब उनको छूट हो जाती कानून से, और टैक्स छूट कर देते, 3-4 वो तो उनका कमरा सड़क बना देती है सरकार खुद, और कहते हैं संध्या घट जाएगी, हम मर जाएंगे सभी सब। तो बढ़ते हुए वृक्ष देश में होते हैं, उस देश में वर्षा ज्यादा होती है, ये मानते हो नहीं? तो मनुष्य जान ज्यादा होगा तो ज्यादा नहीं होगा? जो कितनी जमीन हमारे हिंदुस्तान की बिना खेती के पड़ी है, मनुष्य ज्यादा होगा खेती ज्यादा होगी तो अन्न ज्यादा होगा, या दो ही मनुष्य होगा तो खेती कौन करेगा, घर का काम कौन करेगा? तो भूखा तो मरोगे, संतति बढ़ेगी तो कोई खेती करेगा, कोई घर का काम करेगा, कोई मिल खोलेगा, कोई कोई जलाली करेगा, कोई कुछ काम करेगा।